पवित्रता के राह पर, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है।
पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर।
ओम शांति। आज हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने दिलाराम को दिल में बसाया है। आप कहेंगे क्या हम लोगों ने नहीं बसाया? हम लोगों ने भी बसाया, लेकिन दिलाराम को दिल में बसाते बसाते दिल के रिसर्च करना एक बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ खुद लेकिन बीके भाई बहनों के दिल में तो दिलाराम था ही और है भी। नॉन बीके के दिल में भी दिलाराम को बिठा देना एक बहुत बड़ी कला है, वह कला आपने हासिल की कि उन अज्ञानी भाई बहनों को भी आपने इस ज्ञान मार्ग में चलाया और एक नई जीवन दी। ऐसे नई जीवन प्रदान करने वाले डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, समय प्रति समय अव्यक्त मुरली में भी आप बाप दादा से सुनते भी हैं, दिलाराम के दिल वाले बच्चे, और कैट के कार्यक्रम भी चलते हैं तो हम सभी सुनते भी हैं। तो आपने 29 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और 19 वर्ष से आप जीवन समर्पित कर चल रहे हैं। यज्ञ के अंदर हमारी दादियों की भी आप खूब संभाल करते हैं, न सिर्फ इतना लेकिन वर्तमान समय आप ट्रोमा सेंटर भी संभाल रहे हैं। आप में एक बहुत बड़ी कुशलता है, जिस कुशलता के आधार से आप इतने सारे कार्यों को करते हुए भी अपने जीवन के अंदर उस प्योरिटी को महत्व दिया और उस प्योरिटी के आधार से आपने जिन बातों का रिसर्च किया उसमें सफलताएं हासिल हुई। क्योंकि पवित्रता में एक ऐसी शक्ति है, जहां पवित्रता है वहां बाप साथ में है ही है। तो ऐसे पवित्र जीवन, आदर्श जीवन बनाने वाले ब्राता जी से मैं अनुरोध करूंगी कि ब्राह्मण जीवन के अंदर पवित्रता की गहराई का आधार क्या है वो हम सभी के आगे स्पष्ट करेंगे, और आप सभी एक हाथ मिला करके भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो भाई जी से अनुरोध है कि विषय पर स्पष्ट करें।
ओम शांति। एक बार हम सभी दोबारा से उस सदा हमारा शिव बाबा सदा प्योर है ना, सदा पवित्र है, तो उस सदा पवित्र परमपिता परमात्मा से एक बार अपनी मन बुद्धि को फिर से एकाग्र करें। एक मिनट के लिए एकदम मन बुद्धि में कोई और बात ना रहे, सिर्फ बाबा बाबा और बाबा, ठीक है। मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, इसमें मैं बिंदु मेरा बाप बिंदु, इस फीलिंग में टिक जाएं, बस कुछ एक मिनट के लिए टिक जाएं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। तो जितना मन बुद्धि एकाग्र होगी उतनी हम ज्यादा गहराई से इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि पवित्रता क्या है और पवित्रता की क्या आवश्यकता है और पवित्रता के आधार पर कैसे हम अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बना सकते हैं, जो बाप की शुभ आशा है। जैसे आज की मुरली थी ना, समीप आत्मा के लक्षण, वो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में आ जाए, प्रैक्टिकली जो बाप की शुभ आशा है वैसे हम बन जाएं, फरिश्ता बन जाएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाएं। इसी बात पर गहराई से हम चिंतन करेंगे। इस पर इससे पहले हम एक बार फिर दोबारा से एक मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं। ओम शांति। तो आज का विषय है ब्राह्मण जीवन का आधार संपूर्ण पवित्रता। अगर हम देखें ब्राह्मण माना ही क्या है, पवित्र आत्मा। ब्राह्मण माना पवित्र आत्मा, तो डेफिनेशन, अगर ब्राह्मण की डेफिनेशन ही पवित्रता है, अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। क्योंकि हमारा इस ज्ञान में और भक्ति मार्ग में क्या फर्क है, ये किसी भी जो सत्संग होते हैं उनमें क्या फर्क है, सिर्फ पवित्रता का फर्क है। पवित्रता हमारे जीवन का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। इस नींव पर ही ये मंजिल जो हम बना रहे हैं, सतयुग के और त्रेता के 21 जन्म की जो नींव बना, जो बिल्डिंग बनेगी, किस पे बनेगी, पवित्रता पे बनेगी ना। तो पवित्रता की परिभाषा क्या है, पवित्रता क्या है, पहले हम इस तरह से डिस्कस करेंगे पवित्रता क्या है, परिभाषा क्या है, और पवित्रता कैसे हमारे जीवन में आए, है ना, उसकी विधि क्या है, और उससे फिर प्राप्ति क्या है। उससे अगर पवित्रता के आधार पे हम फिर क्या क्या प्राप्तियां हमको हो सकती हैं, वो हम उस पर आगे चलेंगे। ठीक है, आपके मन में पहले कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं पहले से ही, है ना। इनके अलावा कोई आपके मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या बाद में पूछेंगे, बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात लगे प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए या कुमार जीवन में या कुमारी जीवन में आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप बाद में उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत गुह्य है ना, बहुत गहराई है इसकी, जितना इसकी गहराई में जाओ इसका अंत जैसे पाना बहुत मुश्किल होता है ना। फिर भी हम आज कोशिश करें कितना हम इसकी गहराई में जा सकते हैं। तो पवित्रता माना बेसिकली क्या है, पवित्रता माना शुद्ध, स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब भी क्या, स्वच्छ, स्व माना आत्मा, अच्छ माना शुद्ध, शुद्ध आत्मा। अगर हम पवित्रता का अर्थ देखें ना, स्वच्छ, स्व माने आत्मा, अच्छ माना शुद्ध, तो स्वच्छ माना भी शुद्ध आत्मा। तो स्वच्छ शुद्धता, सच्चाई, सत्यता, सत्यता माना भी क्या है, पवित्रता है। सत्यता ही फाउंडेशन है पवित्रता की। सत्यता की अगर डेफिनेशन देखें बाबा की अवैध मुरली में, जो 77 की मुरली में थी, बाबा ने बताया था, सत्यता माना अपने अनादि माना परम धाम वाला हमारी स्थिति, अपने अनादि पावन सत्वप्रधान स्वरूप, आदि पावन सत्वप्रधान स्वरूप, आदि स्वरूप भी हमारा कैसा है, देवी देवता जन्म, 21 जन्म कैसे हैं, पावन है, सत्वप्रधान है, पावन सत्वप्रधान स्वरूप में स्थित होकर, अपने अनादि आदि पावन सत्वप्रधान स्वरूप में स्थित होकर या स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प करना, बोल बोलना, कोई भी कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, स्वप्न में आना, किसी भी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच ना करना, किसी भी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच ना करना। इस सत्यता के आधार पर पवित्रता की प्राप्ति होती है। जितना हम सत्यता के अनुभव में रहते हैं, जितना ही सत्यता में हम टिकते हैं, अपने अनादि और आदि स्वरूप में टिकते हैं, ये मध्य स्वरूप तो सिर्फ डिस्चार्ज बैटरी, आत्मारूपी बैटरी जो परम धाम से आई थी, आत्मारूपी बैटरी, वह तो वहां तो फुल चार्ज थी ही, कि तो जैसे हम सतयुग में आए बैटरी धीरे धीरे यूज होना शुरू हुई, जैसे मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होते, हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते जब द्वापर युग आया तो द्वापर के शुरू आते आते वो एनर्जी जो थी, वो शक्ति 50% से कम हो गई, और जिससे आत्मारूपी बैटरी की एनर्जी 50% से कम होने से जो आत्मा राज्य थी, राजा थी, स्वराज्य अधिकारी, सत्युग में त्रेता में कैसी थी आत्मा, स्वराज्य, स्व माने आत्मा, मतलब आत्मा का राज्य था किस पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, तीनों सूक्ष्म शक्तियां आत्मा की थी, जो तीनों आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, तीनों पर ही आत्मा का राज्य था। तीनों ही आत्मा के कहने अनुसार चलती थी। कहने अनुसार माना जो आत्मा के सात गुण हैं, आत्मा के अंदर सात ऊर्जाएं हैं, एनर्जी हैं, ज्ञान, ज्ञान माना समझ, समझ की समझ के आधार पर चलती थी। जो मन बुद्धि संस्कार किस आधार पर चलते थे? इस समझ, इस ज्ञान के आधार पर चलते। ज्ञान माना समझ, समझ क्या थी हमें? ये समझ थी कि मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ये समझ थी हमें। और ये समझ हमारे रोम रोम हमारे इतनी थी कि जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती गर्म में, गर्म महल में, ये जो स्मृति हमारी सारी एक एक सेल में, एक एक कोशिका में फैल जाती थी। सत्युग में हमारा रोम रोम ये अंदर समझता था कि मैं कौन हूं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। ये समझ के आधार पे आत्मा हमारी बुद्धि में फिक्स हो भरा हुआ था, पूरी तरह से बुद्धि में भरा हुआ था, बुद्धि भरपूर थी इस बात से, पवित्रता से भरपूर थी। पवित्रता माना क्या? अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा देखना। पवित्रता क्या है? मैंने पहले कहा पवित्रता क्या है, पवित्रता का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ के अनुभव करते हुए दूसरे को भी आत्मा देखना। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, ये भी चमकता हुआ सितारा, ये है पवित्रता। तो इस पवित्रता का अर्थ ही ये है ना। तो पवित्रता से भरपूर थी आत्मा, ये समझ थी बुद्धि में। मन माना क्या? मन में चार भाग, मन के चार एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट नहीं है, मन के चार एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या है? मैं इंग्लिश में शब्द है टीम, थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, और फिर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, दृष्टिकोण या नजरिया, और फिर स्मृतियां। तो स्मृतियां भी हमारी मेमोरीज है ना। तो टीम मतलब मन में भी चारों बातों में, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प में ये भरा हुआ था, मैं कौन हूं। उस समय ये नहीं था मेरा कौन है, वो परमात्मा की याद से हमारे इतना भर गया था ये चीज कि परमात्मा और आत्मा जैसे वो स्थिति समान हो गई थी। इतनी एनर्जी भर गई थी सत्युग में, प्रलद स्वरूप ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, बाबा की याद से नियम मर्यादाओं में चल के अपने आप को बाप समान बना लेते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जितनी चार्ज हो सकती है मैक्सिमम उतनी चार्ज हो जाती है। तो उसमें फिर बाप की याद की आवश्यकता नहीं सत्युग में। अभी हमको बाप की याद की आवश्यकता है। अभी समझ का मतलब ABCD है, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। अभी समझ गया है हमें, अभी संगम में हमें क्या समझ है? मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। ये चलते फिरते उठते बैठते हमारी स्मृति में भरा हुआ है, भरा नहीं हुआ मतलब इसको भरना है ना? जितना जितना हम संकल्प, ये संकल्प बार बार गहराई से करते जाते हैं, रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते जाते हैं। रिवाइज माना मनन करना और रियलाइज माना अनुभव करना। रियलाइज के भी तीन पार्ट हैं, चिंतन, मंथन और सिमरन है ना। रियलाइज में भी तीन स्टेजेस हैं। पहला है चिंतन करना, चिंतन माना मिलाना अपने आप को, जो बाबा कह रहा है उससे अपने आप को कंपेयर करना, चिंता लगाना अपने साथ। चिंता तो होती नेगेटिव और चिंतन होता है पॉजिटिव है ना, कि चिंता तो वही हमें मेरा क्या होगा है ना। बाबा ने तो ये कहा, जैसे बाबा ने कहा समीप आत्मा की निशानी कैसी है, कि एक तो होता है मतलब बाबा ने आज कहा मुरली में समीप आत्मा की निशानी क्या है। आपका हर सेकंड हर संकल्प कैसा होना चाहिए? शुभ भावना संपन्न होना चाहिए, विश्व कल्याण के प्रति होना चाहिए, कोई भी एक संकल्प भी विश्व शुभ भावना के सिवा ना हो, कहा ना बाबा ने। तो ये क्या मेरा चलता है हर समय ऐसा, हर सेकंड मेरा संकल्प ऐसे 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 होते हैं विश्व कल्याण के प्रति हो, शुभ भावना संपन्न हो, ऐसा होता है क्या हर सेकंड हर संकल्प? तो ये चिंतन लगना चाहिए अंदर, अपने अंदर ये चिंतन चलना चाहिए कि नहीं बाबा ने कहा कि मैं आज अभ्यास कम से कम आज तो सारा दिन अभ्यास करके देखूं कि मेरा हर सेकंड बाबा की जो सबके प्रति शुभ भावना रहे, शुभ चिंतन रहे है ना। तो जब ऐसे जब संकल्प हम गहराई से करते हैं, संकल्प करते करते वो हमें जैसे मुझे करना ही है, मुझे हर संकल्प चेक कर बार बार अटेंशन रखें, कि मेरा संकल्प हरेक के पूरी कैसा भी है। चार कारण से हमारे संकल्प खराब होते हैं और चार कारण से अपवित्रता आती है। पहली अपवित्रता क्या है? लगाव। अगर किसी व्यक्ति के प्रति लगाव है आपको, किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, लौकिक माना आप फिर लौकिक पढ़ वाले, और अलौकिक माना जहां आप ब्राह्मण परिवार में आपके सेंटर के भाई बहने या आपकी टीचर या और कोई भी जो भी, मतलब चाहे मधुबन में या बाहर कहीं भी, किसी के प्रति भी लगाव है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसकी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं या जो भी, मतलब या उसका लगाव झुकाव, लगाव झुकाव है ना। लगाव झुकाव में क्या फर्क है? लगाव हमारे अधिकतर संबंधों में होता है और झुकाव किसके प्रति होता है? जिसको हम, जिसका संबंध नहीं होता किंतु वो हमको अच्छा लगता है, उसको देखना झुकाव, उसकी तरफ झुकाव हो गया है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आप माता पिता के साथ आपका लगाव है, भाई बहन के साथ आपका लगाव है, लौकिक में जैसे दुनिया में होता है ना, किंतु जो फिल्म स्टार होते हैं उनसे आपका कोई संबंध तो नहीं है ना, किंतु उनके प्रति क्या होता है, उसका कोई सीन आ रहा होगा, उसकी कोई मैच आ रहा होगा, क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है या कोई कौन कौन है वो अच्छे अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, कोई आपके अगर पसंद वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो तो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के वो देखने लग जाएंगे ना, झुकाव उसके प्रति, झुकाव मतलब जो चीज अच्छी लगती है उसके प्रति झुकाव। और फिर प्रभाव, प्रभाव किसी के भी प्रभाव में रहना, किसी भी देहधारी के प्रभाव में रहना, लौकिक चाहे अलौकिक, यह भी अपवित्रता है। ये सूक्ष्म अपवित्रता है ब्राह्मणों के अंदर। अपवित्रता चार प्रकार की है, एक लगाव, किसी व्यक्ति के प्रति लगाव, उसके साथ बैठना अच्छा लगेगा, उसके साथ खाना अच्छा लगेगा, उससे मोबाइल पर बात करना अच्छा लगेगा है ना, तो उससे कुछ ना कुछ हेलो करना अच्छा लगेगा, वो हमें कुछ कहे अच्छा लगेगा है ना, ये भी अपवित्रता है। लगाव, झुकाव, किसी का प्रभाव, किसी भी बाबा के अलावा किसी भी व्यक्ति के, किसी की भी व्यक्ति के प्रभाव में रहना, और टकराव किसी के प्रति भी जरा भी सूक्ष्म भी, अगर मन में भी कभी विचार चलता टकराव का, किसी ने हमारे प्रति गलत किया है, किसी ने कुछ हमारे प्रति कहा हुआ है, चलिए ओम शांति। तो जो सूक्ष्म, जो डेफिनेशन, सूक्ष्म जो पवित्रता है जो ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर जो बाबा से योग का जो सिद्धांत है, सबसे पहला उसका, इसका साधन क्या है? त्याग। त्याग के बाद तपस्या है ना। तो जब तक हमने इस सूक्ष्म लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव का त्याग नहीं किया है मन बुद्धि से, तब तक हमारी तपस्या नहीं हो सकती। जब तक हम चारों बातों से डिटैच नहीं हो गए, तब तक हम बाबा की याद में अब्जॉर्व नहीं हो सकते। मतलब बाबा की याद में, बाबा की लगन, याद की लगन में मगन हो जाए, खो जाए, स्मृति स्वरूप बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चारों ही बातें हमारे जीवन में हमें बाबा से दूर करती हैं, ठीक है। तो ये जो है, मतलब पवित्रता क्या है, पवित्रता की परिभाषा क्या है, जो बाबा ने समय समय पर बताई, आप सब जानते भी हैं क्या है परिभाषा। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी अपवित्रता का अंश मात्र ना रहे तो उसे क्या कहेंगे? पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता क्या है? ये तो पवित्रता की परिभाषा। पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है? जब व्यर्थ संकल्प भी ना चले, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये संसार रूपी ड्रामा बना बनाया अनादि अविनाशी ड्रामा है, और जो बार बार रिपीट हो रहा है, हर 5000 साल के बाद रिपीट हो रहा है, और स्वयं बाबा ने बाबा का बनाया हुआ ड्रामा है, इसमें क्वेश्चन रेज करना, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये पवित्रता है अपवित्रता है? अपवित्रता। मैं क्वेश्चन रेज किया ना, हमने शक किया ना बाबा के, बाबा इस बना बनाए ड्रामा के ऊपर शक किया ना, क्योंकि इसके हर चीज के पीछे राज है, क्योंकि ज्ञान बड़ा गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है। क्योंकि आज जो हो रहा है, सपोज आज कोई व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है, या मेरी बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पिछले जन्म में मैंने दुख दिया हुआ है, उसके साथ व्यवसाय व्यवहार किया हुआ है। मुझे मान लीजिए आज हार्ट की बीमारी हो गई या डायबिटीज हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, क्यों हो गया, मुझे क्यों हो गया, मैं तो कोई गलत काम नहीं किया पर मुझे क्यों हो गया, क्यों हो गया, पिछले जन्म मैंने किसका दिल तोड़ा हुआ है ना, किसके जीवन में कड़वाहट पैदा की हुई है ना, तो मुझे इसलिए डायबिटीज हुई ना, किसका सिर माथा गर्म किया हुआ है तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, नहीं होगा, किसी कमर को खराब किया हुआ है तो मेरी कमर दर्द नहीं होगी, नहीं होगी, किसी घुटने खराब किए हुए हैं है ना तो क्या होगा, मेरे घुटने खराब नहीं होंगे, नहीं होंगे, किसी का जीना दुभर के सांस लेना भी दुभर किया तो मुझे दमा नहीं होगा इस जन्म में, नहीं होगा, पेट में दर्द, दूसरों के पेट में दर्द किया हुआ है तो क्या होगा, मेरे पेट में दर्द नहीं होगा क्या, नहीं। तो मतलब हर चीज के पीछे राज है ना, वो हिसाब तब चुप हो रहा है ये, मतलब इसलिए जो हुआ है उस पर क्वेश्चन रेज करना है, जो हो रहा है उस पर क्वेश्चन रेज करना और आगे क्या होने वाला उस पर क्वेश्चन रेज करना, ये भी अपवित्रता है, ठीक है। इसलिए कहते जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, ये इसके गहराई में जाएंगे। पवित्रता की डेफिनेशन यहां पे आती है, ठीक है, सबसे बड़ी अपवित्रता ब्राह्मण जीवन में यह है, इस पे हम थोड़ा गहराई से जाएंगे आगे जाके। फिर खाली पवित्रता का मतलब खाली काम विकार नहीं है, पवित्रता का मतलब काम विकार तो है ही, काम विकार का अंश भी हमारे अंदर है, किसी देहधारी पे हमारी थोड़ी सी भी नजर जाती है, देह पे नजर जाती, अपनी देह या दूसरे की देह पे, क्योंकि देह भान का स्वभाव ही काम विकार है, देह भान की नेचर ही काम विकार है, अपनी देह को देखो या किसी और की देह को देखो तो क्या आएगा, तुरंत देह के ऊपर आकर्षण आएगा, तो इसकी नेचर ही काम विकार है। और तो इसलिए कहा ना देह पवित्रता वाला ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या पता है आपको, जैसा आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहते हुए आचरण करती है ना, ब्रह्म तत्व है ना कहां पर, परमधाम, परमधाम में आत्माएं क्या आचरण करती हैं, एक दूसरे को कैसे देखती हैं, आंख होती है देखने की उसके पास, आंख होती है क्या ऊपर, आंख तो नहीं होती ना आत्मा के पास, ऊपर तो आंख तो नहीं है, किंतु आचरण क्या है उनका आपस में, आत्मा आत्मा है ना सभी, वहां तो कुछ है ही नहीं, संकल्प भी नहीं है, तो आचरण है एकदम बस, ना कोई संकल्प है, बस मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा, ये संकल्प भी नहीं है एक्चुअली, पर ये है बस बिंदु बिंदु की फीलिंग है ना, बिंदु बिंदु की फीलिंग है ना, बस बिंदु 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 ना, तो हरेक को बिंदु देखना, अपने को बिंदु देखना, दूसरे को बिंदु देखना, ये है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की एक्यूरेट डेफिनेशन यही है, और इस डेफिनेशन में सब कुछ आ जाता है, क्योंकि यहां पर हम साकार शरीर के साथ हैं, तो ब्रह्मचारी माना, ब्रह्मचर्य माना अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा देखना और ऐसा फिर व्यवहार करना, ये आचरण करना, आत्मा आत्मा से कैसा आचरण करे, बाहर की गाड़ी को ना देखे, सिर्फ आत्मा आत्मा को देखे, तो ये ब्रह्मचारी है ना। तो काम विकार और फिर क्रोध, क्रोध करना भी काम विकार है, क्रोध करना भी अपवित्रता है, ठीक है, क्योंकि फिर देहभान का स्वभाव ही क्रोध करना है। फिर लोभ करना, लोभ भी अपवित्रता है, मोह रखना, किसी के प्रति मोह है अगर आपको, अटैचमेंट है, वो भी अपवित्रता है, अहंकार भी अपवित्रता है, ये देहभान के पांच स्वभाव है, नेचर है, है ना, और देहभान की 10 क्या है, संस्कार है, आदत है, कौन कौन सी है, आलस करना देहभान की आदत है, जैसी देहभान आएगा ना क्या करेंगे, क्या होगा, आलस आएगा, रात को 4 ही घंटा सोए थे ना, देर वो सोने में देर हो गई, चलो पीछे को बैठ जाते हैं कोने में, चलो वहां जाके पीछे थोड़ी देर सो जाएंगे, मौका मिलेगा सो जाएंगे ना, देहभान का जैसे मौका लगेगा भाई छोड़ो आज तो बहुत थके हुए हैं, एक क्लास मिस कर देते हैं ना, चलो आज मुरली मिस करते हैं, आज अमृत वेला मिस कर देते हैं, बाबा ने कहा सारा संगम ही अमृत वेला है, बाबा की कही हुई बातों को हम यूज करते हैं ना, तो ये भी है पवित्रता है। अगर आप पवित्रता की सूक्ष्म संपूर्ण पवित्रता की जहां बात कर रहे हैं, खाली पवित्रता की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता, तो आलस करना, अलबेलापन, केयरलेस होना, जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बना के दिए उस पे अलबेला हो जाना, आगे पीछे कर देना, तो वो भी अपवित्रता है। दूसरे में दोष निकालना, दूसरा मैंने कहा ये मतलब क्या क्यों कैसे कब, दूसरे में दोष, इसने ऐसा क्यों करता है, ये तो ऐसा ही करता है, ये तो इनकी मतलब कैसा भी हो व्यक्ति उस पर दोष निकालते रहेंगे ना। बदलने की भावना रखना, शक करना, किसी पे शक करना, पता नहीं उसने ऐसा कर दिया होगा, अनुमान लगाना है ना। आपको रियलिटी पता ही नहीं है, हम 99% गलत होते हैं, दूसरे के पास सोचते हैं ना, कोई बात हो रही, कोई बात होती है ना तो हम अनुमान लगाते हैं उसने ऐसा किया होगा, उसने कर दिया होगा, जबकि हम गलत होते हैं 99% हम गलत ही होते हैं। आपने भी देखा अपना जीवन में देखो तो 99% टाइम हम गलत होते हैं। चिंता करना, आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, बेफिक्र रहना ना हमको, तो नहीं जब बाबा को, बाबा को सब बोझ देते हैं फिर क्या करने का है ना, तो फिर ये भी अपवित्रता है। भय, डरना, ये भी अपवित्रता है। मैं आत्मा और डर किस बात का फिर, और बाबा मेरा है, बाबा मेरे साथ है, आज बाबा ने क्या कहा, बाबा सदा साथ है, सच्ची दिल है तो बाबा सदा साथ है ना। तो ये जो है भय, प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर में रहना है, किसी बात का प्रेशर में आना, यह भी अपवित्रता है। किसी ईर्ष्या करना, द्वेष रखना, यह भी अपवित्रता है। तो जो देहभान का स्वभाव और संस्कार आदत है ना, तो ये इनसे भी बचना है। तो ये संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी किसी भी विकार का अंश हमारे अंदर ना हो, है ना, किसी भी विकार का अंश ना हो, और साथ साथ वैध संकल्प, वैध सोचना भी अपवित्रता है, वैध देखना भी अपवित्रता है। इसे हम कहते हैं ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल और डू नो इविल, ये तो होगी स्थूल, है ना, ये स्थूल डेफिनेशन हो गई। फिर एक में इसमें एक दो चीजें मैंने और ऐड की, ईट नो इविल, है ना, नहीं तो कोई भी रासिक भोजन और तामसिक भोजन ना खाओ, क्योंकि खा लेने के बाद उसका असर हमारे ऊपर ना हो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। और मैंने एक बात और रीड की, एक और ऐड की, रीड नो इविल, है ना, आजकल मैगजीन पढ़ते ना, मोबाइल पे जोक्स पढ़ते रहते हैं आजकल, नहीं टेलीविजन पे, टेलीविजन देखना भी क्या है, सी नो इविल, टेलीविजन उसके अंदर आता है ना, टेलीविजन कहाँ आता है, सी नो इविल है कि वो गुड है, इविल है ना, तो सी नो इविल है ना, तो टेलीविजन भी उसी के अंदर आता है। तो टेलीविजन, कोई मैगजीन देखना, कोई उसमें कोई हम ऐसे कुछ देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कोई मैगजीन में, कोई चीज में, मोबाइल पर कुछ, किसको SMS आते हैं, सारे टाइम उसी में लगे रहते हैं ना, तो वो भी हमारी स्मृति को खराब करते हैं, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद थिंक नो वेस्ट, है ना, अभी जो इसकी पवित्र, जो अभी बाबा ने 2-3 साल से इस पर, हालांकि बाबा 30 साल से हमें बता रहे हैं व्यर्थ के बारे में, किंतु बाबा का एम्फेसिस अभी कुछ समय से, जैसे लास्ट 3 साल से बाबा का इसी बात पर है कि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ करना, ये भी अपवित्रता है, राइट। क्योंकि जब हम व्यर्थ गवा रहे ना, कहा आज की मुरली में क्या सुना हमने, 1 सेकंड हर संकल्प, हर सेकंड किस में जाना चाहिए, विश्व कल्याण में होना चाहिए। बाप समान बनना, समीप आत्मा की निशानी बताई ना बाबा ने, तो 1-1 सेकंड तो हमने क्या किया, हमने एक सीरियल देख लिया 30 मिनट, क्या कितने सेकंड चले गए, कितने सेकंड चले गए, 30 मिनट को कितने से गुना करो, 60 सेकंड कितने हो गए, 18 सेकंड हो गए ना, नहीं 18 सेकंड हमने वेस्ट किए, संकल्प कितने गए, और सीरियल पूरा होने के बाद कितने कितने कितनी बातें आई, खबर देखनी शुरू की हमने ना, अखबार है ना, अखबार देखना शुरू किया है ना, अखबार में हमने कितना टाइम लगाया, क्या मिला हमको, ये दुनिया रहने वाली तो है नहीं, रहने वाली है, मतलब ये आपको गहराई से डरना मत, मैं कहीं डर जाओ एकदम से ना कि मैं सब कुछ बंद कर रहा हूं ना, सब कुछ बंद नहीं कर रहा हूं, पर मैं प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं। अब हम जैसे आज की मुरली में था ना, हमें क्या बनना चाहते हैं, हम सभी क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं ना, राम सीता कोई बनना नहीं चाहता है। मतलब जो बाबा ने कहा ना अष्ट बादशाही में कौन आते, अष्ट रत्न कौन बनना चाहते हैं, तो आठों शक्तियों की समानता चाहिए ना, आठों शक्तियां सदा इमर्ज रूप में चाहिए। इसकी हम गहराई में जाते हैं अभी, ठीक है, कि पवित्रता के आधार पर कैसे, अभी अब इसके हम जाएंगे कैसे ये पवित्रता है, ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई, पवित्रता क्या है, परिभाषा क्या है, अब हम आते हैं कैसे वो हमारे अंदर आए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चार नियम है, चार मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की ना, उन चारों बातों का, चार नियमों का और चार परहेज का, परहेज माना मर्यादाएं, इन चारों का फाउंडेशन पवित्रता। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो चारों हमसे निभ नहीं सकते, ना नियम निभेंगे ना मर्यादाएं निभेंगे। और ये चार नियम, ये चार नियम चार गोलियों की तरह से, डॉक्टर आपको दवाई लिख के देना चार गोली खा लेना, आपका गला खराब है, जो बीमारी भी है, ये चार गोली खाना, ठीक है, और फिर चार परहेज बता देता है कि चार परहेज करना। अगर आपने खाली गोली खाई तो और परहेज नहीं किया तो क्या होगा, सही नहीं होगा ना, इलाज फायदा नहीं, भले चार आप 10 दिन दवाई खाओ 20 दिन खाओ फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि परहेज के बगैर दवाई काम नहीं करेगी, और जितना परहेज करेंगे दवाई उतना असर करेगी, ठीक है ना, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। तो पहला नियम है अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, अमृत वेला उसका ही पावरफुल होगा जिस, अब कई लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, योग किस, योग क्या कैसे लगेगा मुझे बताओ, योग किससे लगता है हमारा, योग तो हमारा सबका लगता है, किससे लगता है हमारा योग, बैठते किसको नहीं याद आता है, जो हमारे दिल में होता है, जो हमारी बुद्धि में होता है उसको ही याद आएगा ना, नहीं? बैठे यहां पर है याद आ रही मम्मी है ना, याद आ रहा है बच्चा, तो हमारी बुद्धि में योग तो लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, बच्चे से लगा हुआ ना, मम्मी से लगा हुआ ना, नहीं योग लगा नहीं क्या, हाँ बाबा से योग नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि बाबा दिल में नहीं बैठा हुआ है ना, बाबा बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है ना, राइट। तो बुद्धि मैंने बताया मन के भी चार एस्पेक्ट हैं और बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है बुद्धि का दिल, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं ना? और मतलब जो आत्मा है ना, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, तो ये जो है आत्मा, जैसे यहां पर जो हाइपोथैलेमस है, यहां पर दोनों ब्रेन्स के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस है, उसमें और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके जंक्शन पर ही आत्मा है, वो सीट ऑफ द सोल है, वहां आत्मा का निवास स्थान है। तो आत्मा से सात एनर्जी निकल, सात ऊर्जाएं जो बताई ना आपको, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियां, हर समय उससे निकल, जैसे बल्ब से दो ऊर्जाएं निकल रही है, लाइट और हीट, लाइट और गर्मी दो निकल रही है ना, इससे दो चीज फील हो रही है, ऐसे आत्मा से सात लाइट निकल रही है, सात एनर्जी निकल रही है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसी तरह से ये सात ऊर्जाएं भी नजर नहीं आती है, इनका कोई रंग नहीं होता, रंग होता है क्या इनका, कोई रंग नहीं होता, आत्मा का कोई रंग होता है क्या, आत्मा का कोई रंग नहीं होता, ऐसे ही आत्मा से निकलने वाली ऊर्जाओं का भी कोई रंग नहीं होता है, जैसे फूल से निकलने वाली खुशबू का रंग होता है कोई क्या, गुलाब का फूल है उसमें से रंग निकलता है कोई क्या, खुशबू निकलती है ना, ऐसे आत्मा से ज्ञान यहां से निकल के सारी बॉडी की एक कोशिका पे जा रहा है, ठीक है, इसी को इंग्लिश में शब्द भी कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना ग्रंथ साहिब में, दादा स्वामी वाले में या किसी में, इसको शब्द भी कहते हैं, अनद नाद भी कहते हैं, ठीक है, हर कोशिका पे ये शब्द जाता रहता है कि मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं, जब तक ये जाता रहता है तो सारी सेल्स काम करती रहती है, जब उन्हें शब्द जाना बंद हो जाता है, ये साउंड जैसे अल्ट्रासाउंड होती है ना, अल्ट्रा है तो साउंड, अल्ट्रासाउंड जिसमें इको करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, है तो साउंड वो, किंतु क्या है वो साउंड, हमारे कान उसको परसीव नहीं कर सकते, ऐसे ही आत्मा है तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, किंतु उसको हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं, ना तो वैसे देख सकती हैं, ना मशीन से देख, ना माइक्रोस्कोप से देख सकती हैं, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकती हैं, मतलब हमारी आंखें इसको देख ही नहीं सकती हैं, है तो वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, किंतु उसको देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है कि उसको दुनिया की कोई चीज देख नहीं सकती है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जैसे बिजली के तार में बिजली हम अनुभव कर सकते हैं, पर देख सकते हैं क्या? क्या देखना हो तो क्या करेंगे? नंगी तार को हाथ लगा दो, दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो अनुभव करना है ना, अनुभव करना, अनुभव हो तो हो सकती है ना। जोर से करने लगेगा अस्पताल में पहुंच जाओ सीधे ना, बच गए तो नहीं, नहीं बचे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे पास बहुत आते हैं, और मैं समझता हूँ शायद हर दो दिन में तीन दिन में एक दो तीन तो आ ही जाते हैं ना, कई बार दो दो तीन दिन भी इकट्ठे आते हैं। इंडस्ट्रीज में लोग करंट लग जाता है ना, तो वो लेके आते हैं उनको ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो वर्कर्स होते हैं वो भी आते हैं ना। तो ऐसे ही आत्मा को, जो मतलब आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। कई लोग बहुत मुझे बताते हैं, हमारे जैसे हम बाबा को याद करना सिद्धार्थ शुरू हो जाता है, वो यूं करके बहुत ऐसे ऐसे करके अंदर देखते हैं ना, ऐसे आंख ऊपर करके नीचे करके टेढ़ी करके ना, क्योंकि बाबा कमरे में जाके देखो ना, तो कई बार कर रहे होते कोशिश ना आत्मा को देखने की ना, वो देखने की चीज ही नहीं ना वो तो अंदर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, तो उससे जो है ये ज्ञान, और मतलब ज्ञान माने बताया ना, ज्ञान माने ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, मतलब ये बार बार अनुभव करना, जितना इसको अनुभव करते जाते ना, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। अब मैं विधि पे आ रहा हूं ना, विधि क्या, विधि है कि पवित्रता हमें प्राप्त हो ना, विधि क्या है पवित्रता, क्योंकि इसके हम समझ लें इस गहराई से कि हमारे जीवन में पवित्रता कैसे आए, कैसे आएगी, राजयोग से आएगी है ना। जितना हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उतना आत्मा क्या बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, और धीरे धीरे संपूर्ण पवित्र सत्वप्रधान बन जाएगी। तो इस पे हम लोग गहराई से आ रहे हैं, क्या अर्थ है पवित्रता और पावन शब्द में क्या फर्क है, पवित्र पवित्र और पावन शब्द में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये पावन एक क्या क्या शब्द है, उसका क्या मतलब है, और पवित्र का क्या मतलब है। तो मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, और जो परम धाम में रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें कहां याद करना है, यथार्थ याद क्या है, यथार्थ याद है निराकारी आत्मा बन, निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करना। कहां पर याद करना, निराकारी, निराकारी बन, निराकारी आत्मा बन, निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करना। इससे विकर्म विनाश होते हैं। फरिश्ता स्थिति में विक्रम होते नहीं है, किंतु विक्रम विनाश भी नहीं होते हैं। राइट, अगर हम बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन बैठे रहे, घंटों बैठे रहे, तो विक्रम विनाश होंगे क्या? विक्रम विनाश नहीं होंगे। हाँ, विक्रम होंगे नहीं। ठीक है, वो अनुभव अच्छे लगेंगे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, आनंद का अनुभव होता रहेगा, किंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे। उतनी देर हमसे विक्रम नहीं होंगे, किंतु विक्रम विनाश भी नहीं होंगे। ठीक है, तो विक्रम विनाश सिर्फ कौन सी स्थिति में होते हैं, बीज रूप स्थिति में कहो, या परमधाम की स्थिति में कहो, या निराकारी घर की स्थिति में कहो, वहां जाकर के विधेय स्थिति में कहो, उसमें ही हमारे विक्रम विनाश होते हैं। ठीक है, तो ये अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान, मेरे सर्व संबंध उनके साथ है। योग क्या है, एक एक संबंध की अनुभूति में खोए रहना, ये है योग। जैसे मां के संबंध में खो जाओ, बाबा हमारी मां है, शिव बाबा ब्रह्मा मां के थ्रू, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मां की पालना और प्यार दे रहा है, और हमें जैसे हम पैदा होते हैं ना, जैसे जन्म होता है, बाबा हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है। क्या दे देता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है, और वो हमें कितनी देर में ले जाती है परम धाम सूक्ष्म वतन में, एक सेकंड में हमें कहां पहुंचा देती है, सूक्ष्म वतन पहुंचाती है, है? परम धाम में पहुंचाती है, कहां पहुंचाती है, हमें बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। मान लीजिए कोई कोई लिफ्ट आएगा, कोई कोई वहां से क्या बोलते हैं उसको, ये आते हैं ना जो जाते ना सैटेलाइट जाते ना, मान लीजिए धरती पर कोई सैटेलाइट उतरे कि कहीं और से उतरे, और उसको माउंट आबू आना हो पांडा भवन में, तो क्या होगा, अमेरिका में उतार दे, तो यहां पर आने में कितनी देर लगेगी, देर लगेगी ना, तो सीधा पांडा भवन में उतरे तो कितना अच्छा है ना, यहीं पे चौक में उतरे तो बीच में ना? तो ये जो लिफ्ट है कहां ले जाती, सीधी हमको बाप दादा की गोद में उतारती है। कहां उतारती है, सीधा बाप दादा की गोद में उतारती, ताकि हमको एक सेकंड भी देर ना लगे, सीधा यहां से यहां बैठे और यहां से बैठे सीधे कहां पहुंच जाए, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाए। ठीक है, और बाबा वहां क्या बैठा है, खाली बैठा है कि बहुत भीड़ है उसके पास, है, खाली के भीड़ है। हमेशा आपने अनुभव किया हो ना बाबा से, कैसा अनुभव होता सुरेंद्र भाई? मतलब कभी मैंने कभी भीड़ नहीं देखी वहां पे, है ना, बस ऐसे बस आओ बच्चे आओ बच्चे आओ, बस बस अकेला ही जैसे बाबा बैठा, आपके लिए बैठा खाली, आओ बच्चे। कभी देर हो जाए ना सुबह सुबह 4 बजे तो बाबा कहता आज देर कैसे हो गई, मैं तो इतनी देर से तुम्हारी वेट कर रहा हूं। तो ये मतलब एक एक संबंध की अनुभूति करो बाबा के साथ, ठीक है। फिर बाबा की गोद में जाके ना फिर और बाप के संबंध की अनुभूति, फिर बाबा जैसे बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है ना, फिर बाप के संबंध से बाबा क्या कर रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अपने को आत्मा देख सकते हैं। मैं सूक्ष्म शरीर में हूं ना, बाबा की गोद में हूं, तो अपने को आत्मा देख रहा हूं, शिव बाबा को देख रहा हूं, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में देख रहा हूं। देखते रहो आप भी, अभी देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा दिखाई दे रही है, ठीक है, सूक्ष्म वतन दिखाई दे रहा है। फिर बाबा हमको कर्मों की गुहे गति दिखा रहा है, बाबा से हम रूढ़िहान कैसे करते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, समझ का तीसरा नेत्र मिल गया, तो बाबा से रूढ़िहान करते, बाबा ये मेरे को ना दिल में कुछ होता रहता है, ये क्यों होता है बच्चे? फिर बाबा समझाता है, बच्चे कर्मों की गुहे गति ये है, तुमने ऐसा ऐसा किया हुआ ना इसलिए ऐसा होता है। बाबा मैं अब क्या करूं? बाबा जी बच्चे ऐसे ऐसे ध्यान रखो, है ना, ये जो फालतू के संकल्प करते हो इसके बारे सोचते हो ये मत किया करो, ना बस मेरी याद में रहा करो, ऐसे ऐसे रहा करो, ये खान पान में ध्यान रखो, है ना, ये रूढ़िहान हम करते हैं। बाबा मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती, मैं क्या करूं? बाबा मेरी कमर में दर्द होता है, बच्चे तुम खान पान का ध्यान रखो और विस्तार को सार में लाने की शक्ति यूज करो, है ना। बाबा मेरे घुटने ठीक काम नहीं करते, है ना, मन में क्या संकल्प चलते हैं? बाबा मेरा बच्चा ना मेरा कहना नहीं मानता है, क्या करूं बाबा, इसके संकल्प चलते हैं। तो बाबा से ऐसे रूढ़िहान करते हैं, ना बाबा कर्मों की गुही गति समझाता है, गोद में बैठ के रूढ़िहान कहते हैं, बाबा की गोद में बैठ के रूढ़िहान करो, तो बाप के रूप में ऐसे रूढ़िहान करते हैं बाप से, ठीक है, समझ में आई रूढ़िहान कैसे करते हैं? ये तो कभी कहते रूढ़िहान कैसे करें, ना, तो मैंने कहा आज आपसे ये डिस्कस पवित्रता के आधार पर, कैसे पवित्रता आएगी, नहीं तो ये भी अपवित्रता है ना, ये मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, वो मेरा बॉस मेरे को तंग करता है, वो बहन मुझको ऐसे बोलती है, वो भाई ऐसे बोलता है, बाबा मेरे को तकलीफ हो रही है, ये क्या है? इनके संकल्प चलना भी, एक सेकंड भी हमने संकल्प गवाया तो किसमें गया? व्यर्थ गया ना। तो ये बाबा की गोद में बैठ के करो सुबह सुबह अमृत वेले ना, तो पावरफुल अमृत वेला किसके आधार पर होगा? जितनी पवित्र बुद्धि होगी मेरी, चार बातें हैं बुद्धि में ना, दिल, आत्मा रूपी दिल, आत्मा का जो दिल है ना, उसमें चार चीजें हमारे दिल में चलेगी, कॉन्शियसनेस में चलेगी, क्या? एक तो देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये चार चीजें हमारे दिल में बैठ गई हैं, बुद्धि में चली गई। जो आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी पहले, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों से भरपूर थी, सत्युग में जब थी, त्रेता तक भी थी, जब द्वापर शुरू हुआ तो 7वीं एनर्जी कम हो गई, तो मन राजा बन गया, मन का कनेक्शन 5 कर्म इंद्रियों से था, उसने क्या किया, आंखों से नाक से मुख से कान से त्वचा से दुनिया को देखना शुरू किया, दूसरे व्यक्ति को देखना शुरू किया, उनके नैन नक्ष देखना शुरू किया, पहले तो उससे प्रभावित हुआ, वो हमारी बुद्धि में चले गए, पहले तो अपनी देह देखी, तो पहले हमारी देह हमारी बुद्धि में चले गए, दिल में चले गए, फिर दूसरों की देखी, उनकी देह हमारे दिल में, उनके संबंधियों की देह हमारे दिल में चले गए, फिर हमारे देह के पदार्थों की, जो भी हमारे पास मकान था, महल था, प्रॉपर्टी थी, वो हमारे दिल में चला गया, है ना, कॉन्शियसनेस में चला गया। फिर देह का स्वभाव, तो फिर देह का स्वभाव शुरू हो गया था, काम विकार शुरू हो गया था, क्रोध लोभ मोह अहंकार शुरू हो गया था, आलस आना शुरू हो गया था, ये सब हमारे दिल में बैठता गया। अब इसमें जरा भी कुछ ऊपर नीचे होता, देखो जरा हमारे देह में कुछ ऊपर नीचे होता क्या होता है? आज सिर दर्द हो रहा है, क्या होता है? हमारी बुद्धि में यही चलता है, मेरे सिर में दर्द है, बुद्धि में लगाओ बाबा को याद करो, क्या होता है? आज तो सिर दर्द है। किसको दर्द है? सिर दर्द है, सिर को दर्द है कि आत्मा को दर्द है? देह अलग है, आत्मा अलग है, मैं आत्मा इससे ऊपर होकर इसका इलाज करूं ना, डॉक्टर अगर पेशेंट के अंदर घुस जाए और फिर डॉक्टर इलाज कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? डॉक्टर अलग होकर इलाज करे ना, ड्राइवर कार को ठीक करना, ड्राइवर कार को अंदर घुस के ठीक कर सकता है क्या? कार से बाहर निकल के वो खोलेगा बोनेट तभी तो इलाज करेगा उसका, नहीं, या कार में बैठे बैठे ठीक कर लेगा, सीट पर बैठे ठीक कर सकता है क्या? तो हमको इससे अलग होके तब हम इसका इलाज कर सकते हैं ना, नहीं? तो इस तरह से अपने आप को बार बार जैसे ना ये इस बात को, तो बाबा के साथ बैठ के इसका रूढ़ियान करा जाए। कोई बात भी आपकी है अमृत वेले इस बात को रूढ़ियान करो, और रूढ़ियान तभी कर सकता पावरफुल हमारा योग तभी होगा जब इन चारों चीजों को, ये गीता में भी लिखा हुआ बाबा ने समय समय मुरली में आता है कि बच्चे देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से छोड़ो, पहले निकालो, फिर तब अपने को आत्मा रियलाइज कर पाओगे। पवित्रता क्या है, मैंने पैसे पहले बात ही की ना, पवित्रता क्या है, पवित्रता माना मैं आत्मा हूं, दो भी सामने वाले भी आत्मा है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे मां, मेरा बाप, मेरा बॉस, मेरा नौकर, है ना, ये हम सब कौन है आपस में, आत्मा रूप में देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको गहराई से आत्मा रूप में देखना सबको, और फील करना, अनुभव करना। तो ये जब हम देखते हैं तो ये चार, तब अपने को आत्मा समझ पाएंगे, और जब अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद आएगी। एक्चुअली बाप की याद तो, बाप की तार तो यहां तक पहुंची हुई है, किंतु मैं सिर्फ देह के अंदर हूं, इसलिए मैं जैसे ही मैं इससे थोड़ा बाहर आता हूं, कॉन्शियसनेस से थोड़ा बाहर आता हूं, देह की कॉन्शियसनेस से, एकदम तार आके मेरे से आके एकदम चिपक जाती है और करंट आने लगती है। जैसे आपको, आप कमरे में बैठे हो, यहां बैठे हो, और बाहर बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो आपको धूप लगेगी क्या, आप तो पंखे के नीचे बैठे हो, आपको धूप चाहिए, पसीना आना चाहिए, पसीना कैसे आएगा, कैसे आएगा, आप बाहर निकलो ना इस हॉल से तो पसीना आएगा, धूप में जाकर खड़े हो जाओ पसीना आएगा ना, अबे यहां बैठे बैठे को यहां पसीना आए, यहां आएगा पसीना क्या, मैं देह भान में रहते हुए पसीना आ सकता है क्या, देह भान में रहते कभी बाप की याद आ ही नहीं सकती, बाप से कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे जब हम अपने आप को ये चार चीजों से बार बार चलते फिरते उठते बैठते अपने आप से ये बात करनी, मैं देह तो हूं नहीं, मैं तो आत्मा, अभी निकल जाऊं यहां से तो क्या होगा, देह तो मिट्टी हो जाएगी, लोग इसको जलाने ले जाएंगे, है ना, नहीं, कोई जो देह के संबंधी कहते मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, वो हमारे साथ जाएंगे क्या, कोई भी देह साथ जाएगी क्या, तो अपने आप से चलते फिरते बात करने की आवश्यकता है। ये पवित्रता कैसे आएगी, पवित्रता ऐसे आएगी, पवित्रता चलते फिरते अपने आप, ये नहीं कि जब हम योग करने बैठते ना फिर बार योग करने बैठते मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जब योग करने बैठते तो ऐसे करते हैं, सारा टाइम क्या होता है, मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अभी ये काम करना है, ये काम करना है, नहीं, और योग करते समय फिर 45 मिनट इसी में बीत जाते हैं, नहीं बीत जाते, कनेक्शन लगता नहीं है, लगता तो 1 सेकंड में दिखाई देता है, यूं हल्का सा फील होता है, चलो आज तो बहुत अच्छा योग लग गया, है ना, योग लगा क्या, आपने दूध पे स्टोव पे गैस पे दूध रखा भगोने में और रखा और उतार लिया, दूध गर्म हो गया क्या, कीटाणु मर गए, पाप विकर्म विक्रम विनाश हुए क्या, एक भी विक्रम विनाश नहीं हुआ, यूं के यूं है, जैसे जैसे कल थे ऐसे कैसे आज है, कल भी गुस्सा किया था आज भी गुस्सा है, कल भी बुद्धि खराब हुई थी आज भी बुद्धि खराब हुई, वहीं के वहीं खड़े, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े। मैं जब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था ना, तो मैंने, मेरे को तैरना नहीं आता था, तो मैंने तैरना सीखना शुरू किया स्विमिंग पूल में, तो मैं ना, मुझे हमारा ट्रेनर था उसने सिखाया कि वैसे से पैर मारना, तो एक पाइप होता है उसमें ना साथ में ट्रेनिंग के लिए ना, तो उसने कहा पाइप को देख के ना आप पाइप को पकड़े रखना ताकि डूब नहीं जाओ, और इसमें पैर ऐसे से मारने होते हैं, मैंने मारता रहा 3-4 दिन तक मारता रहा, उसने कहा आज आप आज हाथ छोड़ दो, छोड़ के और आप अभी आप तैरना, तो मैंने, मेरे को डर लग रहा था पानी में, मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके मैंने वो हाथ पैर मारने शुरू किए, और मैं तो मैंने कहा बस वो मारता रहा, मैंने कहा बहुत आगे निकल गया हूं अभी, तो जब आंख खोली तो वहीं पे था, एक शायद 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। तो कई बार हम ऐसे ही ब्राह्मण जीवन होता है ना, 10 साल से चले जा रहे हैं, है ना, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, है ना, शाम को बाबा को नमस्ते भी, गुड नाइट भी करके सो जाते हैं, ऊपर सुबह गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का प्रेस भी कर लेते हैं, है ना, और बस फिर वहीं के वहीं खड़े, जैसे 10 साल पहले गुस्सा था ऐसे गुस्सा भी करते हैं, चिंता भी करते हैं, डर भी लगता है, है ना, तो सब कुछ चलता रहता है ना, बाबा भी चलता रहता है, भक्ति भी चलती रहती है ना, नहीं, सब कुछ चलता रहता है, बाबा भी खुश, मैं भी खुश, घर वाले भी खुश, पर है वहीं पर ही, नहीं ऐसा होता नहीं होता, तो ऐसे नहीं, तो प्रगति करनी ये बहुत जरूरी है, तो चलते फिरते हर समय अभ्यास चाहिए वाला, अपने आप से बात करो, दे के संबंध भी देखो, ही मेरे साथ कोई जाएगा नहीं, है ना। मैं इस पर छोटी सी एक बात सुनाता हूं आपको। कई बार हम समझते हैं हमारे संबंधी हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं। एक ना एक वो था, क्या कहते हैं, एक लड़का था, किसी सेठ का लड़का था। तो वो ना मतलब क्या हुआ कि उसने उसको बचपन में कोई साधु, कोई उसका कुल गुरु था ना, तो घर में आया तो उसको उससे बहुत अच्छा लगा। बचपन से उसको वैराग्य की वृत्ति थी थोड़ी बच्चे को, तो उसने कहा कि मैं तो गुरुजी के साथ जाऊंगा। तो गुरु चला गया, माँ बाप ने भी इच्छा भेज दिया उसको, तो वहां चला गया। तो फिर उसको वहीं जाके दिल लग गया, माँ बाप ने दोबारा बुलाया तो वो आया नहीं, तो वहीं रह गया। फिर क्या हुआ, जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो माँ बाप ने एक बार उसको बुलाया, उसकी माँ ने बहाना करके बुलाया कि बीमार है, और बहाना करके बुला के उसकी शादी कर दी। तो वो तो रम गया शादी, हालांकि वहां गुरु के पास उसने बहुत सारी चीज सीखी थी, प्राणायाम भी सीखा और बहुत सारी बातें सीखी और काफी उसमें रमा हुआ था। अभी वो शादी हो गई तो अपने वाइफ थी, सुंदर सी वाइफ थी, बच्चा हो गया, थोड़े दिन बच्चा हो गया। अब वो उसको लगे कि मेरे को बहुत प्यार करती है। तो एक दिन रास्ते में गुरुजी मिल गए, तो रास्ते में गुरुजी ने कहा कि भाई अरे तू इतने साल, कई साल हो गए तेरे को, तू कहां गया, तू तो एक दिन छुट्टी लेके गया था अपनी माँ से मिलने, तू तो कहां रह गया। कि गुरुजी मैं तो हम घर में गया तो माँ ने तो मेरी शादी कर दी, पर मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बगैर एक मिनट रह नहीं सकती है, ना बच्ची भी मेरी हुई है, वो भी इतनी प्यारी है, मेरे बगैर पापा सारा दिन करती रहती है, मेरे बगैर एक मिनट रह नहीं सकती है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी के साथ किसी के बगैर नहीं रह सके, ऐसा हो नहीं सकता है, सब मतलब के संबंध है ना। उसने कहा नहीं नहीं गुरु जी ये बात नहीं है, वो तो मेरे बगैर एक मिनट मेरे बगैर रह नहीं सकती, तुरंत उसने मतलब मर जाएगी वो तो मेरे बिना। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, देख तू ऐसा कर, तेरी वाइफ को क्या अच्छा लगता है। तो उसने कहा उसको खीर बहुत अच्छी लगती। तो उसने कहा शाम को खीर, आज शाम को तू खीर बनवा लेना, खीर बना के खीर डलवा लेना है ना, और खीर खाने की, जब खीर खाते खाते क्या करना, प्राणायाम चढ़ा लेना, सांस रोक के वहीं लेट जाना है ना, सांस रोक के वहां लेट जाना और वो फिर दिखना क्या होता है। तो उसने ऐसे ही किया, उसने उस खाते खाते हिचकी ली और एकदम से सांस चढ़ा के और सांस रोक लिया, पहले सीखा हुआ था उसने, लेट गया। तो उसने उसकी वाइफ ने गया उसके पास आके देखा, उसकी नब्ज देखी, हार्ट देखा बंद, तो गया, तो खीर तो उसको बहुत पसंद थी। तो उसने कहा अभी शोर, पहले शोर मचाने को हुई, तो उसने कहा अभी शोर मचाऊंगी तो खीर भी रह जाएगी मेरी। तो वो तो देख रहा था, वो तो आंख जिंदा था ना, मर तो नहीं गया था ना। अब उसने देखा वो उठ के गई, शोर तो मचाया नहीं उसने, पहले मचाने लगी थी ऐसे यूं किया था थोड़ा सा, मुंह खोला बंद कर लिया, फिर उसने खीर खाई, पूरी खीर खाई, उसकी थाली की खीर भी खाई, अपनी बच्ची को खीर खिलाई, खीर वीर खा के पूरी खीर खाली कर दी, भगोना पूरा खाली कर दिया कि बच्ची बचनी नहीं चाहिए ना, फिर बाद में तो खराब जाएगी। फिर जोर से चिल्लाई अपनी सास को, उसका जोर से चिल्लाई, तो फिर समझ गया कि हाँ सचमुच में कोई भी वो तो मरने के बाद भी खीर खा रही है ना आराम से, नहीं अगर उसको दुख होता तो खीर खाती वो क्या। तो ये संबंध है दुनिया के प्रैक्टिकली ना, नहीं ऐसा। और जीवन कोई चीज साथ में जाती है क्या, अपनी देह साथ में जाती, जिसमें आप देखो तीन चीज बाबा ने कहा मुरली में, तीन चीज हमारे पास है, संकल्प जो गरीब हो चाहे अमीर हो, समय, संकल्प और शक्ति, हर एक के पास है, समय भी है, संकल्प भी है और शक्ति भी है। कहा आप कहां इन्वेस्ट करते हो, क्या इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, कहां इन्वेस्ट करते हैं चेक करो, हमारे पास पैसा है, हम कहां पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा टाइम कहां, हमारे समय कहां जाता है, कहां जाता है बताओ। देखो संभालने में, उसकी इलाज कराने में कोई तकलीफ हो, डॉक्टर के पास दो दो तीन तीन घंटे जाके बैठे रहते हैं, अहमदाबाद जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, कहां कहां दिखाने जाते, नहीं जाते, नहीं देह के लिए जाते हैं ना, और देह के संबंध, हमारा कोई बच्चा बीमार हो गया, हमारा माता पिता बीमार, भाई बहन बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, या उनकी केयर में साथ में उसके विचार चलते हैं, उसी के बारे में बोलते रहते हैं, उसी के बारे में कर्म करते रहते हैं, अपनी देह के बारे में, देह के संबंध, देह के पदार्थों के बारे में, पैसा कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, है ना, पैसा जमा कर रहे हैं, किसकी है ना, देह के स्वभाव आलस में जा रहा है समय, है ना, अलबेलेपन में जा रहा है, चिंता में जा रहा है, भय में जा रहा है, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष में समय जा रहा है, नहीं जा रहा है, काम क्रोध लोभ अहंकार में जा रहा है ने? तो ये हमारा कहां जा रहा है समय, कहां हमारे संकल्प जा रहे हैं, शक्ति कहां लग रही है? इसमें से कोई चीज हमारे साथ जाएगी? जाएगी। तो हम किस में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताओ। ऐसी ऐसी जगह अपना मनी, समय, संकल्प और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जो कि जीरो होने वाली है। जो शेयर किस में जाने वाले हैं? जीरो होने वाले। हम कितना समय बाबा की याद में, कितने संकल्प बाबा की याद के, कितनी एनर्जी हम बाबा की याद की याद में लगाते हैं? और ये समय, संकल्प, एनर्जी कोई भी कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, इवन बाथरूम में भी, ब्रश करते हुए, शेव करते हुए, नहाते हुए, खाना खाते हुए, अपना समय, ऑफिस में काम करते हुए, पेशेंट देखते हुए, मैं देखा आईसीयू में पेशेंट देखते हुए, मैं आईसीयू में पेशेंट देखते हुए बाबा की याद रहती है। सीरियस पेशेंट सामने मर रहा होता तो भी बाबा की याद में रह सकते हैं। कितना भी सीरियस काम करते हुए बाबा की याद, बाबा को क्या है, सिर्फ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं बार बार चलते फिरते नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चमक रही हूं, आत्मा साथ एनर्जी जा रही है, ये कर रही है शरीर, मैं आंखों से, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं। क्यों देख रही हूं? क्योंकि आंखों में वो एनर्जी आ रही है, पवित्रता की लाइट तो दिखाई दे रहा है। पवित्रता की लाइट ना आए तो आत्मा दिखाई नहीं देगा इन आंखों से, है ना। शांति फेफड़े में जा रही है तो सांस आ रहा है, शांति हो जाए, चिंता हो जाए, डर हो जाए तो क्या होगा, सांस चलेगा नहीं, ऊपर ऊपर चलेगा, रुक भी सकता है, दबे का अटैक भी पड़ सकता है। प्यार हार्ट में जा रहा है तो हार्ट चल रहा है, अगर प्यार ना जाए तो हार्ट चलना बंद हो जाए। खुशी जा रही है तो हाजमा हो रहा है पेट में, लीवर में जा रही है और पेट में जा रही है तो हाजमा हो रहा है, हाजमा, अगर खुशी एकदम बहुत गम हो जाए, डिप्रेशन हो जाए तो खाना यहीं कहीं रखा रहेगा, पचेगा ही नहीं। मैं आत्मा खुशी से पेट को, पेट में खाना पचा रही हूं, प्यार से हार्ट को चला रही हूं, फील करो, आत्मा से प्यार जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, हार्ट चल रहा है, शांति जा रही है, चल रही है, आंखों में पवित्रता जा रही है तो आंखों से दिखाई दे रहा है। अपवित्रता हो जाए, इतनी अपवित्रता हो जाए सिर्फ देह देह दिखाई देगी, है ना, वो देखे सारे विकार नजर आएंगे, कोई आदमी दिखाई नहीं देगा, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। अगर पवित्रता ना हो तो हम किसी से व्यवहार नहीं कर सकते, मैं सूक्ष्म बात कर रहा हूं, है ना। अगर खाली खाली अपवित्रता रह जाए जीवन में तो क्या होगा, कोई कार्य कर सकोगे? कोई कार्य नहीं हो सकता दुनिया का। थोड़ी सी पवित्रता बचती है तो ही हम कार्य कर पाते हैं, अगर बिल्कुल स्थूल अपवित्रता हो जाए तो हम कोई कार्य दुनिया कर ही नहीं सकते। इसलिए अपवित्र लोग, बहुत गंदे लोग जो होते हैं ना, कुछ भी कार्य नहीं कर पाते, बिस्तर में पड़े रहते हैं, इसमें शराब पीते हैं और गंदे गंदे ख्याल चलते रहते हैं उनके सारा टाइम, कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसी नशे में पड़े रहते हैं, नहीं होता, दुनिया में सुनते हैं ना आप लोग। तो सचमुच में पवित्रता से सारा हम देख कुछ कर पा रहे हैं। ज्ञान है तो दिमाग में समझ आ रही है, सोच आ रही है, ज्ञान ना हो, ये समझ ना हो, बहुत सूक्ष्म थोड़ा सा भी अगर ये थोड़ी भान रहता है, कितना भी अज्ञानी आत्मा हो तो मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, नहीं तो आदमी ईगो से मर जाए, सिर फट जाए उसका, नहीं? अकल ही ना काम करे। तो इस तरह से जितना चलते फिरते अभ्यास करो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, सात एनर्जी आज कम हो गई आत्मा में, इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस आई है। आत्मा सात गुणों से नरिश कर रही थी किसको, बुद्धि को, मन को, संस्कारों को और आठों अंगों को। आज आत्मा के पास इतनी कम एनर्जी रह गई है, अब वो बुद्धि को नरिश नहीं करती है, मन को नरिश नहीं कर रही है, अब किसको किसका कह रही, सिर्फ देह को, देह मात्र को चला पा रही है, वो देह मात्र को जस्ट मात्र चला पा रही है। थोड़ा सा प्यार कम हो गया, छाती में दर्द शुरू हो गया, थोड़ा सांस कम, थोड़ा शांति कम हो गई, सांस ऊपर नीचे हो जाना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी उदासी आ गई, हाजमा वहीं के वहीं खराब हो जाता है, भोजन पचना बंद हो जाता है, नहीं होता है? थोड़ा सा आनंद कम हो गया, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, थायराइड की बीमारी शुरू हो जाती है, डायबिटीज शुरू हो जाती है, थोड़ा शक्तियां कम हो गई, घुटने खराब, कमर दर्द होने शुरू हो जाती है। आज मतलब जो है एकदम लेवल पे एनर्जी है, जस्ट निमित्त मात्र है, गुजारे लायक, इसलिए आज बुद्धि किसी काम नहीं कर रही, मन किसी का मन, बुद्धि भटक रही है और मन चंचल हो रहा है,
मन पे किसी कंट्रोल ही नहीं है जरा भी, है ना। तो जितना अब आप आत्मा में सातो एनर्जी भरते जाएंगे, जितना अपने को आत्मा बार बार निश्चय करते जाएंगे, बाबा का उतना करंट हमारे अंदर आता जाएगा। और करंट आता जाएगा तो फिर मतलब वो करंट कब आएगा, संबंध से प्राप्ति होती है, याद रहे, संबंध से प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति जाकर के किसी व्यक्ति से अनजान ऐसे मैं किसी से कहूं भाई साहब मुझे 100 रुपए दे दो, देगा मुझे 100 रुपए? और मेरा मैं अपने बाप से जाके बोलूं या मैं अपने बच्चा कोई बच्चा मेरे पास आए कि अंकल मुझे 100 रुपए दे दो ना, क्यों दे दो 100 रुपए, है ना। और मेरा बेटा आए तो क्या कहे, पिताजी 2000 रुपए दे दो ना। बेटा क्या करना है, पापा आज वहां जाओ, पिताजी पापा वहां जा रहा हूँ। बेटा 2000 तो कम पड़ेंगे, तो 1000 और ले जा, है ना, 3000 ले जा। नहीं नहीं पापा क्या करूंगा, नहीं बेटा उसको रख ले एक अंदर वाली पॉकेट में रख लेना, संभाल के रख लेना, बच जाए तो वापस ले आना। नहीं ऐसा होता, तो संबंध से प्राप्ति है ना। ऐसे बैठो योग, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, करंट आ रही है, क्यों आ रही है, किस बात पे करंट ले रहा है, बहुत थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी दे दो, किस बात पे, क्यों क्यों दे दो। तो मतलब संबंध से लो ना, माँ है तू तो मेरी माँ की, माँ की गोद में जाओ ना, फिर बाप की फीलिंग करो ना। हमारा जो यहां योग है ना, योग क्या है, लवफुल पर्पसफुल रिमेम्बरेंस है ना, स्नेह युक्त याद है ना, बिना स्नेह के याद नहीं हो सकती। और संबंध के संबंध के बगैर याद, मतलब याद माना हमें प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना संबंध के प्राप्ति नहीं होगी। तो मां के संबंध में जाके गोद में बैठो, और फिर बाप के संबंध से रूढ़िहन करो, और फिर सतगुरु के संबंध से, टीचर के संबंध से, फिर टीचर बाबा पढ़ाता है, टीचर के संबंध से बाबा हमें तीनों लोकों का ज्ञान बता देता है, सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। सुदर्शन चक्र भी कहां घुमाओ, कई लोग कहते सुदर्शन चक्र हम यहां घुमाएं, यहां नहीं बैठ के घुमाना होता, बाबा की गोद में घुमाना होता है ना? हम तो बाबा की गोद में बैठ के घुमाते हैं ना, फिर बाबा घुमवाता है ना, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप। बाबा की गोद में बैठ के घुमाओ टीचर के रूप में, और सतगुरु के रूप में बाबा क्या करता है, त्रिलोकीनाथ बना देता है, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बनाता है, और सतगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ माना मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है हमको, कि सूक्ष्म वतन में जाओ चाहे परमधाम जाओ, कितनी देर मर्जी रहो सुखधाम में जाओ, कितनी बार मर्जी जाओ, कितना समय मर्जी रहो, ये नहीं कि 10 दिन के बाद नीचे आना है, जितना समय मर्जी रहो, किंतु किस आधार पर रहेंगे, जितना मन बुद्धि हमारी पवित्र होगी। तो पवित्रता की डिग्री, पवित्रता क्या है, करेंसी है ना। आपके पैसे नहीं हो अमेरिका में जाके रहो क्या मिलेगा, पैसे तो है नहीं, एक भी जेब में पैसा, डॉलर तो है ही नहीं, तो वहां जाके क्या करोगे, हर चीज तो डॉलर से मिलेगी। आपकी जेब में $50 है क्या मिलेगा, $50 में कितने दिन रह सकते हो अमेरिका में, कितने दिन रह सकते हो, आपका वीजा तो आपका है 10 साल का, किंतु $50 है सिर्फ, कितने दिन रहोगे, एक दिन डाल, 2 दिन डालोगे, बस वापस आना पड़े ना आपने। तो करेंसी होनी चाहिए, करेंसी है पवित्रता। जितनी पवित्रता माना मैंने क्या बताया, लगाव, झुकाव, टकराव और प्रभाव। किसी भी देहधारी के प्रति जरा भी लगाव है, जरा भी झुकाव है, जरा भी प्रभाव है किसी के प्रभाव में, और किसी से जरा भी टकराव है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी टकराव है, तो हमारी पवित्रता कैसी है, करेंसी नहीं है। ज्यादा देर बाबा के पास टिक नहीं सकेंगे, है ना, वापस आ जाना पड़ेगा, बाबा से रूढ़िहन भी नहीं होगी, है ना। तो पवित्रता की डिग्री को हम बढ़ाते जाएं, और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो जैसे बाबा से संबंध हो ना, तो फिर संबंध ये बात की, अब जैसे हम एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली हमारे 15 संकल्प 1 मिनट में चलते हैं, है ना। जैसे हम ABCD को अंदर अंदर रिवाइज करते हैं, आत्मा बाबा कनेक्शन माने साइकिक संबंध का अनुभव करते हैं, डी फॉर ड्रामा, मैं आत्मा, हर इस संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और परमात्मा शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा दुनिया यहां पे फंसी हुई है कि जो हुआ मेरे साथ बहुत खराब हुआ है, मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वह संकल्प कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, पास से आ रहे हैं, नहीं पास से आ रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ है क्या, आप इससे पूछ के देखो जो हुआ अच्छा हुआ है क्या, मतलब एबीसी है तो फिर डी है, अगर एबीसी एबीसी नहीं है तो डी नहीं है। आत्मा बाबा कनेक्शन एक एक संबंध में खोए हुए हो तो डी, फिर डी माना जो हुआ अच्छा हुआ है, नहीं तो जो हुआ अच्छा नहीं है, जो हुआ बहुत खराब हुआ है मेरे साथ। 90% विचार हमारे कहां से चलते हैं, पास्ट से आते हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स होती है, वो हमारे बैध संकल्प पैदा करती है, नेगेटिव संकल्प भी उसी से पैदा होते हैं, तो यही अपवित्रता है। तो जितना एक एक संबंध की अनुभूति में रहेंगे बाबा के साथ, बाप की, मां की, टीचर की, सतगुरु की, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, बड़ा भाई क्या करता है, छोटा भाई होता है ना तो वो बोझ उठा रहा होता है, तो बाप क्या, बड़ा भाई क्या कहता है, चल तू मेरा सारा बोझ मेरे को दे दे, चल तू तो छोटा है, चल तो खाली चल, तो बाबा जैसा आज की मुरली में था ना, बोझ सारे मुझे दे दो, तो बोझ बाबा। और सखा, सखा माना दोस्त, जो बातें किसको बता नहीं सकते हो सारी बात बाबा को बता दो, बाबा की गोद में बैठ के, बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे से गलती बार बार होती, बाबा मेरे को संकल्प बार बार आता है, बाबा मेरे से बार बार ये गलती, मेरे को बार बार गलती की थी ना पहले, वो मुझे बार बार याद आ रही है, मैं बैठता हूं आपको याद करने, बात वो याद आती है, बाबा इसको दूर करो। तो बाबा सखा के रूप में सारी बात बता दे, कुछ भी बात आए, मां को नहीं बता सकते, बाप के रूप में बता नहीं सकते, बाबा को, टीचर के रूप में बता नहीं सकते, सतगुरु के रूप में बता नहीं सकते, बड़े भाई को भी बता नहीं सकते, दोस्त को सब कुछ बता देते, नहीं बता देते। फिर साजन के रूप में बाबा सजा रहा है हमको, किससे, दैवी गुणों से, और सज्जन के रूप में आत्मा में 5 कीड़े लगे हुए हैं, कौन से कीड़े लगे हुए हैं, कौन कौन से, ये 5 विकार, ये कीड़े आत्मा के अंदर जैसे बहुत गहरे निकले, सज्जन क्या करता है उन कीड़ों को निकालता है, कीड़ों की दवाई डालता है ना अंदर, कौन सा कीड़े की दवाई कौन सी है, कीड़े की दवाई कौन सी है, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही वो दवाई है, वो अंदर डालता है ना तो कीड़े, कीड़े कुल बुलाने लगते हैं, बाहर भागते हैं, है ना, ठीक है, तो वो उस ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, और फिर कीड़े वापस घुस जाते हैं, ठीक, तो उसको बार बार डालनी पड़ती है ना, तो वो कीड़े निकलते हैं तब, है ना, ठीक है, फिर वो परहेज देता है, उन परहेज पे चलना पड़ता है ना, तो ऐसे बार बार अपने आप से अभ्यास करो, ठीक है। और फिर सज्जन के बाद बच्चा, लास्ट 9 संबंध की बात है बाबा से ना, बच्चा माना जो कुछ फिर बाबा मेरा है ना, ये तन मन धन जो कुछ प्रॉपर्टी स्थूल सूक्ष्म जो भी बाबा ताप की है, तो हर बात से एक संबंध की अनुभूति में मैं समझता हूं हम आधा आधा घंटा तो कम से कम आधा एक संबंध में खो सकते हैं, तो कितने घंटे योग हो गया, 4.5 घंटा योग हो गया, नहीं हो गया, मतलब खो जाओ एक भी संबंध में, खो गए ना तो आधा आधा घंटा तो खो सकते हो बिल्कुल आराम से। मैं तो कई बार आधा घंटा इसी में खो जाता हूं, एक ही संबंध में पूरा आधा घंटा भी पूरा से निकल जाता है, 45 मिनट भी एक ही संबंध में निकल जाते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट रूप है, हर 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 संबंध के अलग अलग रूप है, गहराई है उसकी ना, बहुत गहराई में जा सकते हैं। फिर ड्रामा हमें लगता है जो फिर बाबा साथी हो गए ना, एबीसी मतलब साथी है ना, आत्मा बाबा कनेक्शन, साथी है तो साक्षी हो सकते हैं ड्रामा से, जो हुआ अच्छा हुआ, फिर वैध संकल्प नहीं चलेंगे, शायद मैंने ये हुआ ना, मुझे तकलीफ है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा करता है, वो मुझे जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है क्या, बहुत बुरा हो रहा है ना, वो भी तंग कर रहा है, वो भी तंग कर रहा है, वहां से भी तंग, वहां भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है ना, अभी क्या जो हो रहा है अच्छा, फिर ये लगता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो बाबा की गोद में बैठा हूं, देख रहा हूं साक्षी होके ना, फिर बाबा से पूछ लेता हूं, बाबा ये मेरे को ये क्यों हो रहा है, बच्चे तूने इसको ऐसे तंग किया था ना, इसे तेरे को ऐसे करता है ना, तो थोड़ा ब्याज लगाता है, इंटरेस्ट तो लगेगा ना, इंटरेस्ट 100 साल पुराने की बात है तो 100 साल में इंटरेस्ट तो लगा ना बच्चे, तो इंटरेस्ट मैं माफ कर दूंगा। ये राजयोग से क्या फायदा होता है पता है, क्या होता है राजयोग से, क्या फायदा होता है, विक्रम विनाश होते हैं क्या, कितना विक्रम विनाश होता है, पर कितना विक्रम विनाश होता है, मैंने किसी से मतलब पैसे उधार लिए, 500 रुपए उधार लिए 100 साल पहले, है ना, वो गीत है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, है ना, तो वो क्या 100 साल पहले किसी से लिए उधार और मर गए हम, वापस नहीं दिए, इस जन्म में वो मेरे पास आके अब कहता है वो मेरा बच्चा बन के या दोस्त बन के कहता है भाई साहब वो 500 रुपया लिया था ना, वो 500 रुपए हमें वापस कर दो, और ये 50 करोड़ इसका ब्याज है, ये वापस कर दो, नहीं मूलधन भी और ब्याज भी तो मांगेगा, नहीं मांगेगा, पर वो धीरे से बोलता है 500 रुपया था ना वो, और 50 करोड़ उसका ब्याज वापस करो, अब क्या करें, 50 करोड़ 500 रुपए देना है, दे सकते हो। 500 रुपए वापस देना मुश्किल बात है क्या? मुश्किल नहीं है। 50 करोड़ देना मुश्किल है। आप लगाओ ना 100 साल में, 500 रुपए का 50 करोड़ ब्याज हो जाता है। लगा के देखना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना वैसे, क्योंकि बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना, पर मैंने एक बार लगाया था, मैंने टाइम वेस्ट किया था एक बार लगाने में, तो 50 करोड़ से थोड़ा ज्यादा बन रहा था, है ना, आज के रेट के हिसाब से, है ना, तो बहुत ज्यादा बनता है ना। तो वो राजयोग से क्या होता है, ये 50 करोड़ माफ हो जाता है। 500 रुपए तो देने ही पड़ते हैं वापस। मतलब मैंने जो विक्रम किया ना, वो विक्रम का आपको मूलधन तो देना ही पड़ता है, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो। देखो हमारी दादियां भी होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन, आप देखते हो यज्ञ में, देखते हो ना, उनको भी शरीर में आज कर्म भोग आते हैं ना, नहीं आते, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी योग की स्थिति इतनी है कि वो कर्म भोग तो चुकतु कर लेते हैं, किंतु योग से क्या करते हैं, इंटरेस्ट सिर्फ चुकतु होता है, मूल सबको देना पड़ता है, राइट। मूल किसका भी माफ नहीं होता। कई बार कहते हैं हमारे कर्म पूरे विकर्म विनाश हो जाए, नहीं पूरा नहीं विनाश होता है। एक बार मैंने बाबा से पूछा था कि पापा हम बिल्कुल सजा ना पाए, बिल्कुल नहीं बच्चे, सजा धर्मराज के पास जाने की बात है, धर्मराज जितने अस्त रहते हैं ना उनको उनको बिल्कुल सजा वहां नहीं मिलेगी, धर्मराज सल्यूट करेगा, किंतु यहां अपने कर्म इस शरीर करी इस मूलधन तो सबको यहां पर चुकतु करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा बिना मूलधन चुकतु के यहां से जा नहीं सकता, और जिसके मूलधन बच जाएगा वो क्या होगा, उसको सजा खानी पड़ेगी, ठीक, और ब्याज भी बच जाएगा काफी, जो योग करते ही नहीं है मर्यादा में चलते नहीं उनका तो मूलधन ब्याज भी बचेगा ना, वो सजा खानी पड़ेगी, और उसके आधार पे पद डिसाइड होंगे, उसके आधार पे पद डिसाइड होंगे। सजा खाएंगे तो क्या होगा, पद कम हो जाएगा, जो सजा नहीं खाएगा पद ऊंचा पद मिलेगा ना। तो इस तरह से जब हम अभ्यास करें तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है, जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, बाबा की गोद में बैठे, और जो होने वाला क्या अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, सत्युग में जाने वाले हैं, सोने चांदी के महलों में, सोने के चांदी के, सॉरी चांदी मैंने गलत बोल दिया, सोने के महलों में रहने वाले, हीरे जवाहरात लगे होंगे, निरोगी काया होगी, कोई बीमारी का नामो निशान नहीं होगा ना। तो ये जब हमारी स्थिति ये रहे तो पवित्रता आती है। जितना इस एबीसीडी को हम रिवाइज रियलाइज करते जाते हमारे संकल्प कम होते जाते, विचारों की संख्या 15 से धीरे धीरे 10 होगी, 8 होगी, 8 माना शांति, 6 माना प्यार, 4 माना, 4 का मतलब क्या, एबीसीडी, उसमें दुनिया है ही नहीं, एबीसीडी फॉर ड्रामा ना, ये संसार में ड्रामा है, नाटक कहां पर है, आत्माओं का दय में। 3 संकल्प माना, सूक्ष्म वतन, मतलब इतना सूक्ष्म होगा खाली एबीसी, आत्मा बाबा कनेक्शन, इसमें तो इसमें है ही नहीं, देह है ही नहीं, तो हम कहां पहुंच, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। और 2 माना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस है ना, बस एक ही संबंध रह गया, बस बाबा बाबा है ना, और कोई संबंध नहीं, सिर्फ बाबा, बाबा माना बाप, बस मैं बाबा की गोद में, ये आनंद की स्थिति है। और फिर एक संबंध परम धाम, सिर्फ बाबा रह गया, वो एक, जब एक संकल्प सिर्फ बाबा रह जाता है तो हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। और जब परम धाम की स्थिति में पहुंचते हैं तो जो भी हमने विक्रम, जो हमारे विक्रम है ना, पाप कर्म जो किए हुए, अपवित्रता माना क्या, अपवित्रता माना ये विक्रम, ये जो विक्रम रिकॉर्ड किए हुए ना दुनियादार दुनिया में, जितने भी आज हमारे संबंध है वो लौकिक में हमारे साथ आज भी मौजूद है, संबंधों में मौजूद है, तो वो उनको देख के हमारे संकल्प चलते हैं, उनके व्यवहार से हमारे संकल्प चलते हैं, हमारा सूक्ष्म मन, क्या बोलते हैं, चित्त हमारा बड़ा, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाता है। और वो जब हम ऐसे उस स्थिति में जाते हैं तो वो मेमोरीज, जितनी भी विकारों की मेमोरीज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज होती है, 25 की फ्रीक्वेंसी, 30 की फ्रीक्वेंसी, 35, 40, 45 वाली फ्रीक्वेंसी की मेमोरीज होती है। तो जब हम बाबा की याद, खाली एक ही संकल्प बाबा रह जाता है, संकल्प चलने बंद हो जाते हैं, बाबा माना संकल्प चलने बंद, 0.9, 0.8 संकल्प, जैसे बाबा की याद में एकदम एब्जॉर्ब हो गए, देह का बंधन को खत्म हो गया, परम धाम, ये जो लाल रंग कहते हैं ना, परम धाम का लाल रंग होता नहीं है, लाल रंग होता है क्या, किसी ने लाल रंग देखा है क्या, कुंती बहन कभी लाल रंग देखा है ऊपर जाते हो तो, क्या आत्मा को लाल रंग दिखाई देता है क्या ऊपर जाते, आत्मा तो आत्मा को आत्मा ही दिखाई नहीं देती तो लाल रंग कैसे दिखाई देगा। तो परम धाम को लाल रंग नहीं होता, कई बार कई कहते हैं हमें लाल रंग तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों से नहीं पूछते, मुझे आके लोग पूछते हैं कि हम जाते ना परम धाम में गए, लाल रंग तो दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा भाई लाल रंग कहां से दिखाई देगा, तो है ना, लाल रंग तो रंग तो यहां दिखाई देगा, लाल पीला हरा, तो एक्चुअली वो लाल रंग रूपक है किसका, शक्ति का। परमात्मा सर्वशक्तिमान है ना, तो सर्वशक्तियों का जो रिप्रेजेंटेशन क्या है वो लाल रंग के रूप में करते हैं, शक्ति का रूपक। जैसे शक्ति का लाल रंग दिखाते हैं ना, शेरावाली माता लाल रंग की चुन्नी दिखाते हैं, वो लाल रंग की चुन्नी पहन रहती थी क्या हमेशा, है ना। शक्तियां कौन है, हमारी दादियां है ना, तो लाल रंग की चुन्नी पहन के रखती है क्या, कभी पहनती चुन्नी लाल रंग की, तो कोई पहनता नहीं ना। तो बेसिकली वो कई बार ये बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो जब उस स्थिति में संकल्प नहीं चलते और वो स्थिति सर्वशक्तिमान की स्थिति है, तो उसमें हमारी मेमोरीज डिलीट होने लगती है, काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, जो भी आपने काम किया। सपोज आपको किसी व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता है, किसको देख के बुद्धि में संकल्प चलते हैं, तो क्या होगा, आज जब आप देखेंगे दिन में मिलेगा ना, किसी ने कल किसी को देख के आपने गुस्सा किया था, किसी को देख के आपके लगाव आता है, झुकाव प्रभाव या टकराव फील होता है, आज वो व्यक्ति आपसे मिलेगा ना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, भूल ही जाएगा इसने कल क्या किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो विक्रम जो था ना उसके साथ आपका विनाश हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे आपके संकल्प कम होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी अभी फ्रीक्वेंसी आज मेरी 16 रहती है रोज, हर समय, धीरे धीरे क्या होगा, ये अभ्यास करते करते अमृत वेला, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे संकल्प धीरे धीरे 14 रह जाएंगे सारा दिन एवरेज, फिर धीरे धीरे 10 रहने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे 8 रहने शुरू, 8 माना अब मेरे को सारा टाइम शांति महसूस हुआ करेगी। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते, एकदम नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, कई बार सोचते हैं आज चलो आज मैंने बहुत अच्छा अमृत वेला किया, सारा दिन ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते 6 हो जाएंगे, 6 में क्या होगा कि मुझे अब सबके प्रति प्यार महसूस हुआ। जैसे हमारी दादी है ना, दादियों क्या होता है, सबके प्रति प्यार की फीलिंग आती है, कोई कैसा भी हो सबको बहुत प्यार से मिलेंगी, इसको ये भी दो, इसको ये भी दो, इसको ये भी दो, नहीं होता है, तो प्यार की स्थिति लगातार उनकी फ्रीक्वेंसी 5-6 रहती है, 4 रहती है ना। फिर धीरे धीरे 4 पे पहुंच, 4 मना अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहेंगे, देह में बीमारी चल रही है, तकलीफ हो रही है, किंतु मुस्कुरा रही है, फीलिंग नहीं आ रही है। दूसरे कहें दादी आपको दर्द हो रहा है क्या, दादी आपको दर्द हो रहा है क्या, दादी मुस्कुरा रही है, देवान से परे है। फिर धीरे धीरे 3 की स्थिति आ जाएगी, फिर 2 की में आनंद में रहेंगे, है यहां पर देह में ही है किंतु आनंद, वो फरिश्ता स्थिति हो गई, ठीक है, देह में रहते फरिश्ता स्थिति, ठीक है। और 1 माना बीज रूप स्थिति, फिर देह में रहते बीज रूप स्थिति, जब 1 रहने लगी ना, खाली सर बाबा बाबा रह जाएगा, अंत में बाबा कहते हैं ना बाबा बाबा, आपके चेहरे चलन से फील हो के बाबा बाबा, सब कुछ आपका चेहरा ही बोलेगा बाबा, आपके चलन हर कर्म बोलेगा बाबा, प्रैक्टिकल मुंह से बोलने की बात नहीं है, आपका चेहरा दिखाई देगा बाबा। तो ये पवित्रता की संपूर्ण स्थिति होगी। तो पहला तो अमृत वेला, फिर मुरली, ये मुरली से मन परिवर्तन होगा, फिर सारा दिन कर्मयोगी स्थिति, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए, ठीक है, कर्म और योग का बैलेंस कभी होगा, हर कर्म करते योग लगा रहे, जैसे मैंने कहा ना पेशेंट देख रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी करते योग लगा, योग मतलब ये कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए। और चौथी बात क्या है, सोने के पे लेटर लिखना बाबा को, क्योंकि जो भी गलती हम करते हैं ना वो बाबा को लिखने के बतानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, सोने के पे लेटर लिख के सार बाबा सुबह से लेकर 4 बजे से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, बाबा जो वो व्यक्ति से मैंने ऐसे कर दिया, बाबा मैंने उसको गुस्सा कर लिया, बाबा उसने ऐसा मुझे कहा, मुझे फील हो गया, बाबा मुझे वो बात याद आ गई, उस बात को आप चेक करो अपने दिमाग, आज क्या क्या हमने गलत सोचा, गलत देखा, गलत बोला, गलत खाया, गलत सुना, या गलत काम किया, या कोई गलत बात याद आ गई, लिखो लेटर, लिख के बाबा को साइन करो, साइन करके बाबा का ट्रिपल, बाबा का फैक्स नंबर क्या है, 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और आज सारा दिन में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, और फिर चार्ट भरो, चार्ट भर के, और उसके बाद फिर क्या करो, फिर क्या करो, फिर उसके बाद आप जो है मुरली पढ़ो, ठीक है, मुरली पढ़ के सो जाओ, ये 4 नियम पक्के करो, अमृत वेला, मुरली, कर्मयोगी स्थिति और बाबा को अपना पोता मेल देना। और उसके बाद 4 परहेज, पहला परहेज है शुद्ध सात्विक भोजन, हमारा भोजन एकदम शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, ये पराठा पकौड़ा समोसा मिठाई ये क्या है, रासिक है, इससे आलस पैदा होता है, आप खा लो उसके बाद आपको योग लगेगा नहीं, आपको नींद आएगी, बुद्धि में आलस आएगा, छोड़ो ना क्या हम बार बार मुरली निकाल के पढ़ते हैं, बार बार ऐसा करते हैं, नहीं, तो शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध माना बाबा की याद में और सात्विक, सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, फल सब्जी रोटी है ना, और दूध, चपाती जैसे खाते हैं सिंपल, सब चबा चबा के बाबा की याद में खाओ, ठीक है। और फिर शुद्ध सात्विक, और फिर सत्संग, सत्संग माना एक सत्य बाप का संग, बाबा और मुरली, सिर्फ बाबा और मुरली का संग। मुरली के अलावा कोई और किताब पढ़ते हैं, कोई और मैगजीन पढ़ते हैं, किसी और की किताब पढ़ते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो। किसी की और किताबें, कोई ना किसी धर्म की किताब पढ़ना, रामदेव की कुछ बातें सुनना, कोई लोग मुद्रा लगा के बैठते हैं, वो ना मुद्रा लगा कैसे कैसे होती है मुद्रा, पता नहीं क्या करते, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कई लोग बैठे होते हैं हमारी मुरली में बैठे होते हैं ऐसे करते। अरे भाई तुम हमारे चलते फिरते याद है ना, तुम गाड़ी चला रहे हो तो ऐसे से गाड़ी चलाओगे क्या, या खाना बनाओ ऐसे से बनाओगे क्या, अब पेशेंट देखने मुझे ऐसे पैसे करके पेशेंट देखोगे। तो मतलब हम बड़े बड़े होके भी कैसे, कभी कोई मुद्रा लगा के नहीं बैठो, ठीक है, हमारी मन, हमारी तो कॉन्शियसनेस चेंज है ना, कोई मुद्रा, कोई आसन, कोई प्राणायाम करना, हठ योग करना, कोई आवश्यकता नहीं है, करो ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो सत्संग में ना बाबा और मुरली, बस बाबा की मुरली सत्य है और बाबा सत्य है, बाकी किसी की भी जरा भी इंस्पेक्ट में बताओ। चौथा दैवी गुणों की धारणा, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की थोड़ी सी आलस और बेलेपन की आदत उसको बिल्कुल छोड़ दो, सत्यता पवित्रता निर्भयता अंतर्मुखता इसमें खोए रहो, ठीक है। और फिर पवित्रता, पवित्रता सबसे पहली, सबसे पहली पवित्रता ही है, जितना गहराई से पवित्रता धारण होगी उतना अमृत वेला अच्छा होगा, जितना गहराई से पवित्रता धारण होगी उतना मुरली अंदर जाएगी। मुरली तेरे में कितनी बार पढ़नी चाहिए, मैंने एम रखा 21 बार पढ़ने का, ठीक है, 21 बार मतलब 21 बार भले 3-4 बार पूरी मुरली पढ़ो और फिर बीच में 20 बार 21 बार एक एक पॉइंट बाबा का निकाल के, आज बाबा की मुरली कितनी अच्छी थी, 20 बार 21 बार कम से कम एक एक पॉइंट तो मतलब रिवाइज करो ना बाबा का, आज बाबा ने क्या कहा, वरदान रिवाइज करो ना, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, एक एक बात को फिर 10 मिनट 15 मिनट बुद्धि में चलाओ ना, नहीं तो ये क्योंकि लव लेटर ना बाबा का, बाबा की डायरेक्शन हमारे लिए, तो उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो ये जो है जितनी पवित्रता के आधार पे हमारी, फिर पवित्रता के आधार पे लेटर, सच्चा लेटर लिख सकोगे, देवीमान होगा तो लेटर नहीं लिख सकोगे, पवित्रता के आधार पे ही हमारी चार्ट भरा जाएगा, पवित्रता के आधार पे हमारी मुरली फिर पड़ी जाएगी, और पवित्रता के आधार पे फिर हमारा अन्न पे, हमारा आसक्ति पे भोजन खाना, आज भोजन बहुत अच्छा बना है ज्यादा खा लो, ये भी अपवित्रता होगी, है ना। तो इस तरह से पवित्रता जितनी बढ़ती जाएगी इसके आधार पे हमारा ब्राह्मण जीवन, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, उतना हम बेहद में टिकते जाएंगे और उतना हमारा फरिश्ता माना जिसका मन 100% कॉन्शियस होता जाएगा, सूक्ष्म जो ना जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खत्म होता जाएगा और हमारा स्थूल जो अचेतन मन भी खत्म होता जाएगा, 100% कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे तो हमारा फरिश्ता बनते जाएंगे, फिर देवता बनते जाएंगे, फिर दैवी गुणों की धारणा आती जाएगी, ओके। तो इस तरह से ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है कि तो इसकी आप अनुभूति करो, तो इसका आधार क्या हुआ, ईश्वरीय जीवन में, ईश्वरीय जीवन का आधार क्या, पवित्रता। किस आधार पे होगा, इस ज्ञान के आधार पे, इस मुरली के आधार पे, जितना इस मुरली में, सिंपल सी बात है, जितना इस मुरली को रिवाइज करोगे, रियलाइज करोगे कि बात को अनुभव करोगे, ये है बाबा का कहना, मुरली है बाबा का श्रीमत, जितना इस पे चलेंगे, आज की मुरली आज उसका स्वरूप बन जाएंगे। 6 स्टेप याद रखना मुरली के, श्रवण माना सुनना, फिर मनन करो माना रिवाइज करना, फिर चिंतन माना अपने आप से कंपेयर करो, फिर चिंतन के बाद मंथन, उसको फिर कैसे मेरे जीवन में आए और गहराई में जाओ, फिर सिमरण, फिर जो रस निकला उसको अंदर सिमरण करो और उसका स्मृति स्वरूप। तो 6 स्टेप में जब मुरली को बार बार दिन में अभ्यास करेंगे तो आपकी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी और शक्तिशाली बन के क्या हो जाएगा, फिर पवित्रता है, ठीक है। ये मुरली ही साधन है जिससे आपका मन रूपी, मन और बुद्धि क्या होगा, पवित्र होता जाएगा, ठीक है, और फिर आपका अमृत वेला पावरफुल होगा, ठीक है, फिर विक्रम विनाश होते जाएंगे। तो इनसे फिर जितना सातों गुण बढ़ते जाते हैं उसके आधार पे पावन बनते जाते हैं, सतो प्रधान से पावन बनते हैं, ठीक है, और सातों गुण जब कम हो जाते हैं तो तमो प्रधान से पतित बनते हैं, सतो प्रधान, सातों गुण जब आधे से कम रह जाते हैं तो पतित कहलाते हैं, सातों गुण 50% से ऊपर हो जाते हैं तो पावन बन जाते हैं, ठीक है। ओम शांति,
ओम शांति। बहुत अच्छी बातें बताई, ABCD पढ़ी ना, कहेंगे बचपन में भी पढ़ी थी, लेकिन वो बचपन की एबीसीडी और आज की एबीसीडी में क्या फर्क था? लगा फर्क है? क्योंकि खुद को रियलाइजेशन करना, साथ साथ परमात्मा के साथ अपना वो संबंध व जोड़ना, और दो क्वेश्चन, क्यों और क्या। जहां ये एबीसीडी है वहां ये क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं है। और चार बातें और बताई, लगाव, झुकाव, टकराव और प्रभाव। इन चार बातों से हम स्वयं को दूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर रीति से इन सब बातों को स्पष्ट किया, इसलिए हम सतीश भाई का दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं।